ओम शांति। आज 25 तारीख है मार्च की और बाबा की मधुर वाणी हम सुनेंगे। कल भी बाबा ने पवित्रता के ऊपर बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे को सामने रखे कि कैसे माया आती है, कैसे हमें पवित्र बनना है और कहां कहां कैसे। कई प्रकार के एग्जाम्पल बाबा ने दिए, चूहा का एग्जाम्पल दिया और भी कई एग्जाम्पल बाबा ने हमें दिए कल कि माया कैसे आती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है। तो इसी प्रकार मैं ऐसा समझती हूं कि ये मुरली जो है आज की वो भी कंटिन्यूएशन में है, मतलब वही लहर बाबा की चल रही है और बाबा हमें निश्चय दिलाते हैं, तो हम धीरे से मुरली पढ़ना शुरू करते हैं। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। बाबा ने सबको महावीर बना दिया है। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो जो भी श्रीमद देना देते हैं वो मुरली में ही दे देते हैं। जिसको करना है करे और जिसको न करना हो न करे। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। उत्तर है, श्रीमत पर चल पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हो सितम सहन करना पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहो तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है तो क्या करना चाहिए, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, तो यही सोच करके नथिंग न्यू, किसी बात में डरना नहीं है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। गीत बजाते थे क्या? नहीं। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है कि बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती है। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक वो समझ न सके। ज्ञान के ऊपर हम लोग कविता बनाते या सॉन्ग बनाते, दुनिया वालों को तो नहीं समझ में आएगा ना, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक नहीं समझेंगे वो लोग। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप मिला है खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी हैं। खुशी होनी चाहिए हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में जाएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाबा ने किया हमें भी करना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि निराकार श्री बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए हैं। जब से ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया कितना हंगामा किया है, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले हैं। हम समझते हैं कि हम पवित्र बन रहे हैं, एक दूसरे को आत्मा समझते हैं, पति पत्नी को भाई बहन समझते हैं। वो हम तो समझते कि पवित्र बन करके हम सत्युग में जाएंगे, वो दुनिया वाले बोलते हैं कि ये तो घर पिटाने वाले हैं। पवित्र रहने से घर पिटता है वो समझते हैं। कितना डिफरेंस है समझ में। बच्चे बड़े होते हैं कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगैर काम कैसे चलेगा। कहते कि शादी नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो अब जब बूढ़े बूढ़िया हो जाएंगे तो क्यों देखेगा आपको, सबसे ज्यादा तो यही कहते हैं। हमको भी ऐसे ही बोलते थे कि अब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी देखरेख कौन करेगा, अगर शादी करके बच्चे नहीं पैदा किए तो। हम कहते हैं हमारा कर्मों का जो है, जिस प्रकार का हमारा कर्म होगा वो ही हमको साथ लेके जाएगा। कोई बच्चे बच्चे साथ लेके जाने वाले नहीं है, उनको वो देखभाल करने वाले नहीं, अपने कर्म अच्छे कर देना, यही हम उनको जवाब देते थे। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते तो कुछ भी नहीं है, काम विकार नरक का द्वार समझा तो नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, ब्रह्मा बाबा को ज्यादा अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा कि भी गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवान वाच्य है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो कोई महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। एक बाबा की परवाह कीजिए, किसी के नहीं करना है। पुरुष है रचता, रचना खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। पति पत्नी में पुरुष को कहा जाता है भगवान, तो वो पवित्र बनते हैं तो वो अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि आपको पवित्र बनना होगा। बस इस बात पर ही बहुत झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल के आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। बाबा ने अपने बच्चों को भी बोला था, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो अपना जाकर प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज नहीं हुआ। कितने हंगामे हुए लेकिन बाबा को कभी दुख नहीं हुआ कि उनके खुद के बच्चे भी चले गए तो भी दुख नहीं हुआ। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। अमेरिका में भी निकला था, जहां जहां सिंधी लोग थे वहां पर ये सिंधी लोगों का एक न्यूज़पेपर होता है, तो निकला था। तो उसमें कहा गया था कि एक है बूढ़ा है, वो चाहता है कि इतनी उनको महारानियां चाहिए जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं, और इतनी मिल चुकी है और इतनी और ज्यादा चाहिए, 300 के ऊपर मिल गई है, और भी उनको चाहिए 16,000 पता नहीं कितना। और ये न्यूज़पेपर हमारे कंट्री में भी आया था, ट्रिनिडाड, एक तो छोटा सा देश है तो वहां पर भी आया था। क्योंकि एक भाई हमारे पास ज्ञान में आया और उसने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो उसने कहा मैं तो ये ब्रह्मा बाबा को न्यूज़पेपर में देखा हुआ हूं। तो मैंने कहा कैसे देखा आपने, तो बोला ये इसके बारे में तो बहुत सारी बातें निकली है, ये इतनी इनको रानियां चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर भी वो ज्ञान में आ गया। उसको ब्रह्मा बाबा देखते के साथ में इतना अट्रैक्शन हुआ, लेकिन वो छोटेपन में देखा था उसने, न्यूज़पेपर देखा था, अगर कोई डेट वगैरह हो तो हम निकलवा भी सकते वहां से। नथिंग, ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है, कल पहले भी हुआ वही हुआ। हमने एक लंदन में जब हम गए थे तो मुरली भाई जो जयंती बहन के फादर थे, उन्होंने एक किताब दिखाई हमें, जो होती है ना किताब में लिखा होता है इसके बच्चे इतने 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 बच्चे ब्रांच दिखाते, तो उसमें वो ब्रह्मा बाबा का जो ब्रांच है ना उसको काट दिया, वो लाइन डाल दिया उसको, उस किताब से ही निकाल दिया लाइन डाल के। तो देखो कितना, वो तो कितनी इंसल्ट की बात होती है, जैसे कि जात से निकाल दिया आपको, कृपलानी जात से ही निकाल दिया वो किताब के अंदर, उसके बाद नाम निशान नहीं। तो बाबा कहते कितनी हिम्मत चाहिए, बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंजित हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों तक में निकल गया, नथिंग न्यू, ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है। इसमें डरने की बात क्या है, डरना किस बात से है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को भी बचाना है। बाप जानते हैं कि सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको भी तरस पड़ता है। दिल रहम दिल है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे कोई बात में डरो नहीं, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नग्न करते थे, वो स्टोरी बताई है, कहानी बताई है महाभारत में, बाप 21 जन्म के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बनी है, तमो प्रधान बनी है पुरानी सृष्टि, हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुरानी घर को छोड़ना ही पड़ता है, नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव तो रह न सके, हमेशा तो एक जैसी नहीं रहेगी। तुम बच्चे जानते हो कि ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूं, यहां रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है? तुम बच्चों ने अनेक बार राज किया फिर गंवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सत्युग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, सत्यु के अंदर जब बूढ़े हो जाते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाली मृत्यु कभी होती नहीं है मां, अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है, शिव बाबा शिव के मंदिर ढेर बनाए, मूर्ति तो घर में रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में रख सकते हैं, चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं, इतना दूर दूर जाकर के पूजा करते हैं। कई लोग कैसे कैसे पैदल जप करते हैं 6-7 दिन तक, कई लोग वो करते गुलाची मार के जाते हैं, क्या उनके पास जाने के से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? मूर्तियों के पास जाने से, मंदिरों में जाने से मिलेगा? अभी तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भपका देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य तो सत्य में था, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। कपरेज में तो नहीं होगा विमान आदि, वो तो सब गुम हो गए। फिर इस समय सब निकले हैं, अभी 100 साल से निकले हैं विमान आदि, अभी सब सीख रहे हैं। जो सत्युग के अंदर विमान बनाते हैं उसकी कला कब सीखते हैं हम लोग? जो विमान बनाने वाले कलयुग में सीखते हैं और वो सत्युग में बनाते हैं, तो वो संस्कार लेके जाते हैं, वो बनाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है उनकी। लेकिन सत्युग के अंदर जो है पवित्रता होने के कारण फुल प्रूफ होते हैं, गिरते पड़ते नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता है वहां पर। यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलाने वाला पता नहीं क्या बुद्धि में उसके चल रहा है। फिर इस समय सब निकले हैं, अभी ये सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। हम बच्चों को पता है भगवान आया हुआ है, दूसरों को तो नहीं पता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। फिर वही पवित्रता की बात आ गई, इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी मिली है, ब्रह्मा बाबा को भी गाली मिली है, श्री कृष्ण ने भी गाली खाई है, ऐसा दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने गाली खाई है ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण ने गाली खाई है वो नहीं। जो कृष्ण के बारे में लिखा है वो सब ब्रह्मा बाबा के जीवन में अप्लाई होता है। अब श्री कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा। बीच में कभी हो न सके, जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। जो जो जन्म में जो भी फीचर्स होगा वही होगा। अब तुम जानते हो यही फीचर बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला हुआ है, ये है नई बात। बाबा भी नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसको समझ में जल्दी नहीं आती है? जब तकदीर में हो तो कुछ समझे, उनकी तकदीर में ज्ञान में आना लिखा होगा तो जरूर वो बात को समझेंगे। महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं, अब वह अवस्था हो न सके। होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसीलिए कहा जाता है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसाल नरक का विनाश होना ही है। सत्युग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी है वननेस, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य और रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय, तो बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नबज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करना हो तो जाकर करो। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने बच्चों को कहा शादी करना है तो कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, आपकी शादी करा देंगे, उनकी शादी कर। फिर कोई कोई निकल पड़ा। तो हर एक की नबज देखनी पड़ती है। पूछते हैं बाबा ये हालत में हालत है, हम पवित्र रहना तो चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते, पवित्र रहने से घर से निकाल देते हैं, तो क्या करें, हम कहां जाएंगे अकेले, नौकरी वकरी भी नहीं कर सकते, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो क्या करेंगे। अरे ये भी पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, ज्ञान में आने के पहले किसकी सगाई हो गई है, राजी करना है उसको। हर्जा नहीं, शादी कर सकते हो लेकिन अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं ना उस समय कह दो मैं तुम्हारा पति हूं, गुरु हूं, अभी मैं जो बोलते वो आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, शादी के पहले लिखवा लो कि मैं ये पवित्र ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो पवित्र रहेंगे हम। ऐसे किसी के सगाई हो जाती है तो बाबा एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं पर ये पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, मंजिल भी भारी है प्राप्ति भी जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है, कब लगती है, काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। पवित्र से क्या प्राप्ति होती है इसका पता नहीं होता है तो छोटी छोटी प्राप्ति, लड़के को बोलेंगे अगर आप चले जाएंगे तो हमको आपको हम अपना हिस्सा नहीं देंगे, इनहेरिटेंस नहीं देंगे। बच्ची होती है तो उसको बोलेंगे घर से निकल जाओ तो क्या करेंगे। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। एक जन्म में भी पैदा होते के साथ में तो नहीं रह रहे, जब समझ आती है तब हम शुरू करते हैं। किसी की पौना किसकी आधा जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। हम तुम्हारे पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण का पांव दबाए थे। ये आदत कहां से निकली, जब हम स्टूडेंट थे तो एक माता निकली थी ज्ञान में, तो वो तो पैर रोज अपने पति के पैर धो के पीती थी, पीकर के आती थी क्लास में। फिर धीरे धीरे उसको समझ आई तो उसने स्टॉप किया। भक्ति मार्ग के चित्रों से ये लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए हैं, ये आदत कहां से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सत्य में तो ऐसी बात होती नहीं है। नारायण कोई थकता है क्या? थकावट होती है नारायण को जो पैर दबाना पड़े उसको? क्या जो लक्ष्मी पैर दबाएगी नारायण थकता नहीं है जिससे लक्ष्मी पैर दबाएगी? थकावट की बात तो हो न सके, सत्य के अंदर थकावट की बात नहीं होगी। ये तो दुख की बात हो जाती है, थकावट का मतलब दुख ना? वहां दुख दर्द कहां से आया? सत्य में कहां से आया दुख दर्द? तब बाबा के ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया था। ब्रह्मा बाबा को चित्र पसंद नहीं आया कि लक्ष्मी जो पैर दबाती थी नारायण की, तो उसने आर्टिस्ट को बुला करके निकाल दिया। नशा तो चढ़ा था ना, छोटेपन में भी वैराग्य रहता था। ब्रह्मा बाबा की स्टोरी बता रहे, छोटेपन में भी वैराग्य रहता था, इसीलिए बहुत भक्ति करते थे। तो बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, दादे का वर्षा लेते हैं, ग्रैंडफादर का वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में। पतित पावन सभी सीताओं के राम, बाप को कहा जाता है ट्रूथ, सच खंड स्थापन करने वाला, वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, आज हिम्मत और डर। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना ही है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है, बलियार जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते हैं तमेवे माता से पिता तमेवे, एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सत्युग में पांच तत्व भी दुख देने वाले होते हैं, पांच तत्व भी दुख देने वाले नहीं होते। सत्युग में पांच तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में पांच तत्व भी तमो प्रदान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना है, बच्चों को सदैव खुशी में रहना है। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, कितनी बड़ी बात है, बाबा ने आपको अडॉप्ट किया है। फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है पढ़ाते भी है, पहले अडॉप्ट करते हैं फिर पढ़ाते हैं श्रृंगारते हैं, किसके लिए? सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए। हमको सिर्फ बाबा का बच्चा नहीं बनाते, उससे भी ऊंची स्टेज में ले जाते हैं कि हम दुनिया का उद्धार जैसे बाबा कर रहे ऐसे हमें करना है, विश्व परिवर्तन करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। कोई साधारण आत्माएं नहीं है, हमेशा अपने आप को तपस्या करते हुए झाड़ के उसमें देखो, रूट के अंदर देखो, जड़ों में देखो कि हम तपस्या कर रहे हैं। पूरे झाड़ के अंदर जो रूट का स्थान है और जो बाबा का स्थान है वो ही चमकता है ज्यादा, दूसरा इतना नहीं चमकता है। तो बाबा खींच करके हमको तपस्वी बना दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हर जगह अलग अलग प्रकार से बोलते हैं तो हम भी सुनना चाहते हैं। धारणा के लिए मुख्य साथ सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, हिम्मत और निडर रहना है, बाप पर पूरा वारी जाना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेते हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चलती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है, ऐसा लगता है कि हमने पहले भी पार किया था, अभी भी पार कर रहे हैं। वो 5000 वर्ष की जो स्मृति है वो हमें आ जाती है तो उससे हमें लगता है कि नथिंग न्यू, ये तो हमेशा करते आए हैं। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते लेकिन सदा संतुष्ट रहते हैं। ये क्या हो गया, बहुत आश्चर्य से हम बात करते हैं, नहीं ये तो 5000 वर्ष पहले हुआ था, कल्प पहले भी हुआ था, ऐसा आप संतुष्ट रहेंगे। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा लेकिन उसके समय उसी समय कारण को निवारण में बदल देंगे। स्लोगन, स्व स्थिति में स्थित रह करके सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। सर्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमार्थ में से व्यवहार स्वतः ही सिद्ध होता है। अभी देखो ये परमार्थ जो शब्द है उसको कैसे मामा ने समझाया है वो ध्यान दीजिए। भगवान उवाच्य, तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। ये परमार्थ जो शब्द है जो सेवा में आता है हमारे पास, तो उसका अर्थ भी बाबा ने उसको ब्रेक करके दो में करके बताया है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ, श्री बाबा को हम जाएंगे जानेंगे तो हमें को परम पद मिलेगा, अर्थात परमार्थ में सेवा में जब जाएंगे तो व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। देखो देवी देवताओं को के आगे प्रवृत्ति, देखो देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर के रहती है। ये पांच तत्व सुख स्वरूप मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति की प्राप्ति होती है। अभी इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख होता है, स्ट्रेस हो जाता है, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो चाहते हैं वो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है स्ट्रेस पैदा हो जाता है, और फिर स्ट्रेस पैदा उसका असर अपने शरीर पे पड़ता है, माइंड पे पड़ता है। इस समय देखो मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। सत्य में तो ये प्रकृति वा अदब रहती है, वो अदब से चलती है, नियम से चलती है प्रकृति। देखो देवताओं के जड़ चित्रों पर कितने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होते हैं तो उस समय कितने वैभव होते हैं, लेकिन उनको उन वैभवों का कोई अहंकार नहीं होता है। इतने अच्छे अच्छे पहने रहेंगे तो उनको अहंकार नहीं होगा। आज के जमाने में एक छोटा सा भी कुछ पहनेंगे ऐसे हिल के चलते हैं कि लोगों का अटेंशन जाए उनके ऊपर, ये कहां से लिया, ये तो बहुत सुंदर लगता है, कितना पैसा खर्च किया आपने, तो वो अहंकार है ना, वो दिखाते हैं, हिल हिल करके दिखाते हैं। सत्य के अंदर तो कोई करने की जरूरत नहीं है, कितना पैसा कोई लेता भी नहीं है, चुराता भी नहीं है। जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, भक्ति के अंदर भी बहुत खर्चा करते हैं, तो ये क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उनकी यादगार बने हुए हैं, उनका पूजन भी कितना होता है। ये वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प के समान अवस्था में है, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ में लग गए हैं, इसीलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। मतलब दूसरे परमार्थ का मतलब है कि उनके उनके प्रति अच्छा करे, मतलब उनका उनको कुछ सुख दे, उसके बदले में पांच विकार आ जाते हैं तो दुखी हो जाते, इसीलिए रिजल्ट उल्टी आ रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति दिखाते हैं, बाबा में निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपने जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसीलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार, मतलब वो इंटेंशन चाहिए कि क्या हमें करना है। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। अब एक इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, ये टाइटल है ये महीने का। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उनके ऊपर ये फेथ होता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहां से शफा मिल जाएगी, वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता है। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहां पहुंचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होंगी ही। फेथ जैसा कल भी फेथ का था कि फेथ जितना रखेंगे उतना निर्भय हो जाएंगे और निश्चय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएंगे, तो आज भी फेथ के ऊपर बोला गया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शीलू बहन कहती है थोड़ा परिचय दे दीजिए। तो नाम शरीर का हेमलता है। ज्ञान में हम 1968 में जब ब्रह्मा बाबा थे तभी हम आ गए थे, लेकिन उनको मिलने का सौभाग्य नहीं मिला था। जब हम आए थे ज्ञान में तो हमारा 19 इयर्स का एज था, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो इसीलिए हम आ भी नहीं पाए। फिर बाबा का अंतिम संस्कार हुआ तभी भी हमने अपने पिताजी से बहुत रिक्वेस्ट किया, तभी भी नहीं आ पाए। तो हमने बाबा को पत्र लिखा था। पत्र के तीन भाग थे। एक भाग में अपना परिचय दिया, हम कुमारी हैं, स्टूडेंट है, ये किया। दूसरे में हमने बाबा की कौन कौन सी बातें हमको अच्छी लगी उसके बारे में कहा। और तीसरा भाग हमने भाग किया था निश्चय, कि कौन सी बातें हमारे को निश्चय हुआ है कि आप आ गए हैं, ब्रह्मा के तन में आ गए, नई दुनिया स्थापन कर रहे, हमको ये पूरा निश्चय है और हम आपके आपके बन के रहेंगे, ऐसा हमने पत्र लिखा। लेकिन जब पत्र लिख के वापिस बाहर आकर के देने के लिए गए सेंटर पे, तो हमारे पिताजी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ और कभी आप सेंटर पे नहीं जा सकेंगे। तो हम तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी भी पढ़ी थी, तो हमने सोचा शायद हमारा पार्ट जो है फ्री होने के बदले बंधन वाली आत्मा निकले हैं। तो हम दूसरे दिन सेंटर पे गए, सुबह नहीं जा पाए लेकिन शाम में गए, तो पत्र भी दे दिया। और हमारी बहन जी ने बोला कि आप जो है अभी मुरली सुन के जाना। तो हमने मुरली सुनी, फिर बोला कि रोज मुरली सुन के शाम में जाने का। तो हम रोज जाने लगे, दो दिन हमने मुरली सुनी, हमको इतनी ताकत आ गई, वो पत्र जैसे बाबा के पास पहुंच ही गया ऐसा लगा मुझे। और इतनी ताकत हमारे को दो मुरली के अंदर आ गई कि हमने कहा कि आर या पार, या तो बंधन या नहीं तो छुट्टी। तो हमने अपने पिताजी को जाकर के बोला कि देखो गवर्नमेंट भी हमको परमिशन देती है, उनका भी संविधान जो है सेक्युलर है, जो भी हम धर्म स्थापन करना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं, तो हमको अभी छुट्टी देनी चाहिए। हम जिस तरह से हमको भगवान की प्राप्ति हो रही है उसी प्रकार से हमको जाना है। वो तो डर गए कि आप, उन्होंने बोला अच्छा आप जा सकते हैं, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बोला जा सकते हैं 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल की आपकी पढ़ाई है, तो पढ़ाई जब होगी तब तो आपको कोई शादी वादी का कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद आपको मानना पड़ेगा। हमारे मन में तो लगा कि जब ताकत नहीं है तब तो उसने बोल दिया, रास्ता दिखा दिया, और जब ताकत बन जाएंगी 5 साल के बाद वो करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उस प्रकार से हमने ज्ञान लिया। पवित्रता के रहने के लिए तो बहुत कुमारियों को थोड़ा सहन भी करना पड़ता है। तो मुझे एक दिन बहुत अच्छा सा ड्रीम आया, और ड्रीम में ऐसा लगा कि मेरी माताजी भी ज्ञान में थी, वो भी खड़ी थी मेरे सामने, और दूसरे लोग भी खड़े थे, और वो बहुत तेजी से बहुत गुस्से से हमारे पिताजी हमारे पास आए और कहे कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अभी आपको जान से मार देंगे। तो मैं तो डरी नहीं, हमारी माताजी तो बहुत डर गई, क्या हो जाएगा। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, सब लोग यहाँ से जाओ, मैं और अपने पिताजी से मैं निपट लूंगी। मैंने कहा मारो, सच्चाई में नहीं था वो, स्वप्न में आया, मारो। जितना मां के खत्म करो, हम पवित्र रहकर के मरना चाहते हैं, हम अपवित्र बन के नहीं रहना चाहते। वो ड्रीम ने हमको इतनी ताकत दी कि कोई हमको रोक नहीं सका। लेकिन हमने एक युक्ति की कि हम अपने पिताजी को बाबा का बच्चा समझते थे, अब पिताजी को पिताजी का, जैसे बोलते हैं कि तन मन धन और संबंध को चेंज करो, तो हम अपने पिताजी को बहुत योग का दान करते थे, उनको बाबा का बच्चा समझते थे। हम तो सबसे छोटे थे, वो सबसे बड़े थे, 60 साल से ऊपर थे, तभी भी हमको योग का दान हमको देते थे कि ये बाबा के बच्चा है, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा। धीरे धीरे हमारे बंधन टूट गए, वो बड़ी खुशी से हमको कर दिया। और फिर माता जी ने भी हमको बहुत खुशी से छोड़ दिया। फिर हम सेंटर पे आते थे, मधुबन में आते थे, तो दादी कहती थी आपको कितने साल बाकी है पढ़ाई खत्म करने में। मैंने कहा 4 साल है दादी। फिर बोलते 3 साल है, फिर 2 साल है, फिर 1 साल है। फिर मैंने कहा बाप दादी अभी खत्म हो गया है, पढ़ाई पूरी खत्म हो गई, क्या डिसीजन लेना है आपको। तो मैंने कहा कि दादी हमने इतनी पढ़ाई की है, हमारे माता पिताजी चाहेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिस करें। तो कहा कि आपको कहाँ भी जाएंगे वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी सेंटर पे जाएंगे आपको डबल सर्विस करनी पड़ेगी। तो वो तो ठीक था। फिर मैंने कहा हम तो शादियां करते तो इतना धन लगाते हैं, तो मैं कुछ धन लेके आऊं ना, ऐसे थोड़ी सरेंडर होना है मुझे। तो दादी ने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर हमने कहा कि हमारी माता जी ओल्ड है, वो भी ज्ञान में चलती है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या करूं, तो पहले उसको भी लेके आ जाओ। लेकिन दादियों को मालूम होता है, हम लोग को पता नहीं होता है। तो मैं घर में जाकर उसको बोला कि दादी ने कहा कि आप भी हमारे साथ चल सकते हो। बोला माताएं होती है बच्चों में और थोड़ा तो मोह होता है, तो वो तो छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद दादी ने कहा कि तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो हम सब सामान लेके भी आ गए सेंटर में। तो फिर उसके बाद दादी को पता होगा ये तो सिर्फ काम है, फिर कभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो हमको पहले पहले गयाना में भेजा गया था, जहां पर अंकल आंटी निकले, वो हमारे होस्ट थे, बहुत प्यार से रखा। एक परीक्षा जरूर आई थी मेरे को जाने के पहले, ये परीक्षा आई थी कि 1976 में बाबा ने जून में डिस्ट्रक्शन बोला, अभी 3 महीने के लिए मैं इतना दूर सात समंदर कैसे जाऊं, नहीं यहाँ ही मरना है, यही करना। फिर हमने अपना दिल काट करके बोला चल 3 महीने के लिए हम चले जाते, जाना होगा तो वहां से चले जाएंगे, परमधाम में जाना है। तो इस प्रकार वहां सेवा करते करते करीबियन की सर्वे हम अभी त्रिनिदाद में बैठे हैं, और वहां पर अभी 50 साल हो गए हमको, ये साल 50 साल हो गए, ये मार्च के महीने में ही 50 साल हुआ। अभी 29, 28 को गए थे हम यहाँ से मार्च में, तो अभी 50 साल हो गए। अभी वहां का विस्तार करेंगे तो बहुत हो जाएगा। लेकिन बाबा कैसा कुमारी को निकाल दिया, ये मेरे को लगता है कि अगर हम लौकिक अलौकिक से अटैच होना चाहते हैं तो संबंध को बदलो। ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, नहीं कुछ नहीं, बाबा के बच्चे बन करके उनको साकार से हो, सब बंधन टूट जाएंगे। अच्छा
हे लता बहन हैदराबाद से निकले हैं, हाँ वो तो बताया नहीं, नाम बताया,
हैदराबाद से कुलदीप बहन के माता पिता के द्वारा निकले हैं।
और उस समय हम हैदराबाद में थे,
और ये हमारी टीचर भी रही थी, शीलू बहन हमारी टीचर थी।
तो हैदराबाद में आप तब स्टूडेंट थे, मेडिकल पढ़ रहे थे, पढ़ाई शायद पूरी भी हो गई थी, और कैसे एक ढक से है, जैसे आज बाबा ने कहा ना महावीर, तो महावीर बन करके ये निकली और बाबा ने इनको विदेश सेवा में भेजा। तो 76 से ये गयाना, त्रिनिदाद, सुरीनाम, अभी तो कितने देशों को संभालते हैं, सारा
कंट्री के अंदर हमारे पास सेंटर होंगे। इतने छोटे छोटे आपके यहाँ पर एक छोटी छोटी गीता पाठशाला के समान है।
वहां पर वो छोटे छोटे देश हैं, तो वहां पर भी बड़े वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहां भी आपने बहुत सेवा की। हम भी कब आए थे इनके पास और सब देशों में मुझे भेजा था, कितने देशों में हम गए थे। तो
वहां का पानी बहुत सबसे बेस्ट है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट पानी अटलांटिक ओशन, कैरिबियन ओशन के अंदर, जहां पर कि सीजन के अंदर एक घंटे में एक प्लेन उतरता है एक आइलैंड में, तो समझ सकते हैं कि कितने लोग वहां पे आते होंगे। टूरिज्म है और थोड़ा हमारे पास तेल भी निकलता है, दुबई जैसा तेल निकलता है। और
आपने शायद पहली बार मुरली सुनाई
अभी इस सीजन में, पहले तो सुनाते थे, हर सीजन में सुनाते थे, लेकिन इस सीजन में मैं पहली
बार। इतना दूर से मैं समझती हूँ, हर सीजन में दो बार आते हैं मधुबन, गयाना, त्रिनिदाद, कितना दूर है साउथ अमेरिका, वहां से आप हर साल दो बार आते हैं।
तो अभी तो हमारी टिकट ही कैंसिल हो गई, क्या करेंगे।
चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी।